नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। भारत ने नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रतिनिधि सभा को भंग किया। अगले साल 5 मार्च को चुनावों की घोषणा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में तेजी लाने के लिए यूरोपीय संघ के अधिकारियों से बातचीत की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया कि अधिक टैरिफ लगाने से भारत के साथ संबंधों में तनाव पैदा हुआ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीन समस्या के समाधान के लिए द्विराष्ट्र प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। और खेलों में 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जापान के टोक्यो में शुरू। अब समाचार विस्तार से। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया है और अगले साल 5 मार्च को नए संसदीय चुनावों की घोषणा की है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने कल रात अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसी के साथ सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। पिछले 3 दिन तक चली गहन चर्चा के बाद कल सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। ये शपथ ग्रहण समारोह युवा प्रदर्शनकारियों के घातक और हिंसक प्रदर्शनों के बाद हुआ है। विरोध प्रदर्शन, प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्से के कारण हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशीला कार्की को नेपाल का प्रधानमंत्री चुने जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत ने नेपाल में श्रीमती सुशीला कार्की के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इससे नेपाल में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने कहा कि एक निकट पड़ोसी, एक लोकतांत्रिक देश और दीर्घकालिक विकास साझेदार के रूप में भारत दोनों देशों के लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। बांग्लादेश में अगले साल आम चुनाव होंगे। अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने अगले वर्ष 15 फरवरी तक चुनाव कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के बीच मतभेद के बावजूद अंतरिम सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही चुनाव होंगे। प्रेस सचिव ने कहा कि ये चुनाव न केवल शासन का भविष्य तय करेगा बल्कि आगामी चुनावों और बांग्लादेश की समग्र राजनीतिक व्यवस्था की नींव भी रखेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारो सेफकोविक तथा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। ये मुलाकात व्यापक मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्रता से संपन्न कराने के प्रयासों के अंतर्गत हुई। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्ष एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर संयुक्त मंत्रिस्तरीय व्यावसायिक संवाद में श्री गोयल ने कहा कि भारत यूरोप को एक विश्वसनीय साझेदार, अहम सहयोगी और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध मित्र मानता है। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ एक दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिस्पर्धी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस से तेल की खरीद के लिए भारत पर भारी शुल्क लगाने से दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं, लेकिन उन्होंने दोनों देशों के बीच जारी व्यापार वार्ताओं पर सकारात्मक रुख अपनाया।
एक निजी टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत पर 50% शुल्क लगाना अमेरिका के लिए कठिन बात थी। श्री ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव बनाने के व्यापक प्रयास के तहत अपने कदमों का बचाव करते हुए कहा कि वे रूस पर शुल्क सहित आर्थिक उपायों से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस बीच भारत में अमेरिका के राजदूत पद के लिए राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नामित सर्जियो गोर ने बृहस्पतिवार को सीनेट में भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया। श्री गोर ने रक्षा और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का भी वादा किया। रूसी तेल के मुद्दे पर श्री गोर ने कहा कि भारत को रूस का तेल खरीदना बंद करने के लिए राजी करना ट्रंप प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री गोर ने यह भी बताया कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते के निकट हैं। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी प्रशासन ने भारत के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुत खास दोस्त बताते हुए कहा कि वे आने वाले सप्ताह में उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। श्री ट्रंप की टिप्पणी पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती की पुष्टि करते हुए वर्तमान व्यापार वार्ता के सकारात्मक परिणामों पर विश्वास व्यक्त किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
अमेरिका में प्रभावशाली रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली क्रिक की हत्या के सिलसिले में एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने बताया कि संदिग्ध की पहचान 22 वर्षीय टायलर रॉबिन्सन के रूप में की गई है, जो यूटा का ही रहने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी किर्क की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गवर्नर कॉक्स ने कहा है कि जांचकर्ताओं का मानना है कि संदिग्ध ने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन आगे की जांच जारी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के क्रियान्वयन पर न्यूयॉर्क घोषणा के समर्थन वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। एक रिपोर्ट।
फ्रांस के इस प्रस्ताव के पक्ष में कल 142 देशों और विपक्ष में 10 देशों ने मतदान किया। 12 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। विरोध में मतदान करने वाले देशों में अर्जेंटीना, हंगरी, इसराइल और अमेरिका शामिल हैं। घोषणा में गाजा में युद्ध समाप्त करने, दो देश समाधान के प्रभावी कार्यान्वयन के आधार पर इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष का न्याय संगत, शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान प्राप्त करने और क्षेत्र के सभी लोगों के लिए बेहतर भविष्य बनाने पर सहमति व्यक्त की। घोषणा पत्र में इसराइली नेतृत्व से एक संप्रभु और व्यवहार फिलिस्तीन देश सहित दो देश के समाधान के लिए स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिबद्धता जारी करने का आह्वान किया गया। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में मानवाधिकार वकील और यूएन वॉच के कार्यकारी निदेशक हिलेल नेउर ने इजरायली हमलों के विरुद्ध कतर का समर्थन करने पर पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश बताया है। इससे पहले बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अन्य बैठक में इसराइल के राजदूत डैनी डैनन ने कतर हमले का बचाव करते हुए इसकी तुलना पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका के हमले से की थी। कांगो के इक्वांटियोर प्रांत में एक नाव दुर्घटना में 86 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस दुर्घटना में अधिकांश पीड़ित विद्यार्थी थे। दुर्घटना के कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्थानीय मीडिया के अनुसार नाव पर क्षमता से अधिक यात्रियों की संख्या और रात के समय को दुर्घटना का कारण बताया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं शशांक कुमार।
जापान के टोक्यो में आज से शुरू हुई 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं की 35 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में संदीप कुमार 23वें और प्रियंका गोस्वामी 24वें स्थान पर रहे। वहीं रामबाबू दौड़ पूरी नहीं कर पाए, आज शाम पूजा 1500 मीटर दौड़ में खेलेंगी। 18 सितंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में 19 सदस्यीय भारतीय दल 15 स्पर्धाओं में खेलेगा। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज भाला फेंक में पदक के बड़े दावेदार हैं। उधर ब्रिटेन के लिवरपूल में जैस्मिन लांबोरिया और नुपुर श्योराण विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं। जैस्मिन ने 57 किलो के सेमीफाइनल में वेनेजुला की ओमेलिन अकाला को और नुपुर ने 80 किलो से अधिक भार वर्ग में तुर्की की दुचास सेमा को 5-0 के समान अंतर से पराजित किया। इस बीच 48 किलो में मीनाक्षी हुडा ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर भारत के लिए महिला वर्ग में चौथा पदक पक्का कर दिया है। इससे पहले पूजा रानी ने 80 किलो के सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। उधर पुरुष वर्ग में भारतीय अभियान समाप्त हो गया है। 10 सदस्यीय पुरुष टीम 2013 के बाद पहली बार बिना पदक के वापस लौटेगी।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रतिनिधि सभा को भंग किया। अगले साल 5 मार्च को चुनावों की घोषणा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में तेजी लाने के लिए यूरोपीय संघ के अधिकारियों से बातचीत की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया कि अधिक टैरिफ लगाने से भारत के साथ संबंधों में तनाव पैदा हुआ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीन समस्या के समाधान के लिए द्विराष्ट्र प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया और खेलों में 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जापान के टोक्यो में शुरू। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।